ये आकाशवाणी है। पर्सन बिहाइंड द स्टोरी पॉडकास्ट के पहले संस्करण में सुनिए आजाद हिंद फौज के लेफ्टिनेंट आर माधवन पिल्लई के साथ आकाशवाणी संवाददाता प्रज्ञा देवड़ा की विशेष बातचीत।
कुछ लोग सुर्खियां बनाते हैं तो कई लोग चुपचाप अपनी छाप छोड़ जाते हैं। पर्सन बिहाइंड द स्टोरी पॉडकास्ट में हम ऐसे ही लोगों से बात करेंगे, जानेंगे उनके जीवन, उनके चुनौतियों के बारे में, उनके हौसलों, उनकी उड़ान के बारे में। पर्सन बिहाइंड द स्टोरी पॉडकास्ट सीरीज के आज पहले संस्करण में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं, लेफ्टिनेंट आर माधवन पिल्लई। लगभग 100 वर्ष पहले 1926 में आपका बर्मा में जन्म हुआ था। आपका परिवार तमिलनाडु से संबंध रखता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित होकर आपने इंडियन नेशनल आर्मी ज्वाइन किया और देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। लेफ्टिनेंट आर माधवन पिल्लई जी, आपका आकाशवाणी के पॉडकास्ट में स्वागत है। आज के भारत में अधिकांश वह लोग हैं जिन्होंने आजादी के बाद जन्म लिया है। आप अपने अनुभव से बताएं कि कैसा होता है एक ऐसे देश में जन्म लेना, एक ऐसे देश में रहना जो पराधीन हो।
उस वक्त का अब का बहुत फर्क है। उस वक्त का है जीना लेकर का हम लोग का बड़ा मुश्किल में। आजादी होने के बाद में हम बहुत खुश हो गया, हमारे देश आजाद हो गया। इसके बाद में हम अपने आजादी से जी रहे हैं। कोई काम करो तो अपने कोई किसी के डरने के नहीं है, है? अपने देश है, अच्छे है। आज़ादी के बाद में बहुत अच्छे है हमारे देश। बहुत अभी बहुत तरक्की हुआ कंपटीशन अमेरिका से, चाइना से देखने से। अब तो अभी तो 3 नंबर में पहुंच गया, बहुत खुशी की बात है। पहले शुरुआत में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग के बारे में आप लोग तो पता होगा। ये लाल बिहारी बोस ने सिंगापुर आकर के जापानियों ने ब्रिटिश आर्मी को खरीद करके रखा था। उन्होंने आकर के जापानी से बातचीत करके इसका कुछ नहीं करना, ये हम आजाद हिंद फौज में भर्ती करके हम अपने देश के लिए लड़ेंगे करके उन्होंने वो बनाया था। उस वक्त ये नहीं बनाया था, राजबिहारी बोस, जनरल मोहन सिंह और जापानी का नाम था मेजर फुजीवारा, तीनों मिलकर के ये नहीं बनाया था। उस टाइम नेताजी यहाँ नहीं है, नेताजी बर्लिन में था। 2 जुलाई नेताजी पहुंचा था सिंगापुर। सिंगापुर आने के बाद में बर्मा में, तो जन्म का बर्मा था, बर्मा में नेताजी को बर्मा गवर्नमेंट ने बर्मिस लोग आज़ादी दिलाया था। जापानियों ने कैप्चर करके, ब्रिटिश ने कैप्चर करके आज़ादी उनके बर्मा होने के स्पेशली इनवाइट किया था नेताजी का VIP गेस्ट। नेताजी वो 3 दिन के लिए आया था, 28 तारीख आया था नेताजी उधर बर्मा में आकर के। क्या क्या करना करके गवर्नमेंट से उन्होंने सिंगापुर से सारा फौजी को वहाँ ले आने के लिए बातचीत किया था। और INA यूनिट और इंडियन इंडिपेंडेंट लीग था ऑफिस और INA का ऑफिस, सारा डिपार्टमेंट का उधर से एग्रीमेंट करके बर्मा लेकर आने के लिए उन्होंने साइन किया था। कब 1943 में अगस्त में जाकर के बाद में नेताजी चले गया। जाने के बाद में फिर दोबारा नेताजी आया था 1944 जनवरी 7 तारीख नेताजी रंगून पहुंचा। INA यूनिट, IAL, आज़ाद हिंद बैंक, सारे INA का सारा आकर के सेटअप किया। इसके बाद में मैं नेताजी का राजबिहारी का बोल करके मैं INA में काम करने जाता हूँ करके से INA में भर्ती हुआ।
तो आपका INA में जाने का मन क्यों किया? आपने कैसे, किस बात से आप प्रेरित हुए कि आपको INA जाना है, जो आपने निर्णय किया कि मैं?
मैंने कहा तो इसमें INA में काम किया था, नेताजी के लिए फंड इकट्ठा किया हिंदुस्तानी से। नेताजी ने किसी से हाथ नहीं फैलाया विदेश में, जर्मन में जाकर भी मदद लिया, उनके सक्सेस नहीं हुआ। पीछे उन्होंने बोला जापान में जाकर के तो एनिमी एनिमी दोस्त होता है उनसे जा करके बातचीत करो। नेताजी जापान गया टोजो से बातचीत करके उसे जब रंगोन आ करके अपने ऑफिस वगैरह सेट अप करके फिर उसी वक्त मैंने राजबिहारी बोस को बोल करके मैं आईएनए में भर्ती हुआ था। पहले आईएजल में नेताजी आने के बाद में जनवरी 23 उसके जन्मदिन का उसको त्रास में बैठा करके सोना से तोला था जुबली हॉल में। इसके बाद में नेताजी का अप्रैल एक बार सिटी हॉल में त्रास में बैठा दो बार सोना से उसका इक्वल एंड वेट ऑफ नेताजी का साथ सोना सब चीज डोनेट किया था। ये सब किसी का पैसा है? सब साउथ ईस्ट एशिया में एरिया था हिंदुस्तानी का, उन्होंने ये किया डोनेट किया था नेताजी का।
तो
उसी पैसा से तो नेताजी जापानियों से हथियार खरीदा सब चीज करेगा।
तो जब आपने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ज्वाइन किया, इंडियन नेशनल आर्मी के साथ जुड़े, तो आपके परिवार में आपके जो आसपास लोग थे उनकी क्या प्रतिक्रिया थी?
बहुत खुश है, लोग का अपने देश के लिए काम करने जा रहा है वो बहुत खुश है। कोई यही नहीं है, नाराज नहीं है, परिवार में नाराज नहीं है, आस पास का भी कोई नाराज नहीं है, सब खुश है। हमारे वहाँ पे नौजवान है बहुत बरसती हुआ था ये इंडियन इंडिपेंडेंट लीग प्रचार करने पड़ता जा करके।
अच्छा, तो कैसे प्रचार करते थे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग में आपको? मतलब जब आप क्योंकि आप तो छोटे थे उस समय, आपको कैसे पता चला इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के बारे में?
मैं इंडियन इंडिपेंडेंस लीग में भर्ती हो गया था। 140 ब्रांच है बर्मा में, मैं रंगून में था। वो लीग के प्रेसिडेंट से जा करके पहले बातचीत किया था मैंने, लीग में शामिल होने जाता है आप क्या बहुत कोई कुछ है आ जाओ करके उस मेरे को चांस दिया भर्ती होने के लिए। उन्होंने काम दिया था ये काम ऐसे करना वो काम ऐसे करना, उसी हिसाब से हम लोग काम करता था।
तो आज़ाद हिंद फौज में आपने क्या क्या काम संभाला और किस तरह से अपना योगदान दिया, आपकी क्या भूमिका थी?
हमारा क्या ड्यूटी मिला था आईएनए में भर्ती होने के नौजवानों का भर्ती करवाया था सारे का, ये मेरा काम रिक्रूटिंग में भर्ती कराया था इनका।
तो रिक्रूटमेंट में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता था?
कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है रिक्रूटिंग में है, वो लोग खुश है ऑफिसर लोग का।
तो आप लोगों को कैसे रिक्रूट करते थे, कैसे सिलेक्ट करते थे लोगों के
एक
पास?
टीम बना करके एक एक एरिया में जाकर प्रचार कर रहे थे, अपने देश के लिए कुर्बानी करना है, अपने देश आज़ाद होने के लिए। नेताजी ने भी सिंगापुर से टेलीकास्ट किया था, उसको मैं बताता हूँ आपका, आज़ादी तुम्हारे खून का कुर्बानी मांगती है, इसके दरवाजे पर तुमको सब कुछ निछावर करना होगा, अपनी जान अपने औलाद अपने दौलत अलकर सब कुछ तुमने अब तक सब कुछ दिया, सोने चांदी के खजाने, फड़कते बाजू तड़कते दिल, मगर आज़ादी के प्रयास इतने में नहीं पूछती, आज मातृभूमि में सिर चढ़ाने वाले पुजारियों की जरूरत है, इसलिए मैं वादा करता हूँ कि तुम मुझे खून दो मैं आज़ादी दूंगा
जी।
ये इसके सारा यूनिट से जा करके प्रचार करता था नेताजी का आवाज लिख नेताजी का भाषण में।
नेताजी की क्या विशेषता थी कि इतने सारे लोग उनसे प्रेरित हुए और उनके साथ जुड़े?
नेताजी का नेताजी वो अपने एक किला रह करके देश के हिंदुस्तान का आज़ाद कराना करके उनके मन से देश छोड़ के बाहर जा करके काम किया था। इसी अरे देश 14 देश में हमारा राजबिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग स्थापना किया था, उसी से प्रचार हुआ था इस नेताजी के बारे से। नेताजी का क्या क्या जरूरत पड़ेगा, युद्ध के लिए पैसा जरूरत है और सैनिक जरूरत है, नौजवानों वो सब का काम हम लोग कराएंगे, भर्ती किया सबका, सब नौजवानों की कोशिश आईएनए में भर्ती हुआ, कोई कमी नहीं है, अपने काम का अच्छे रूप से निपटाया उन लोगों का।
जैसे आप बता रहे थे कि आईएनए में लोगों को भर्ती किया, तो जब उनकी ट्रेनिंग की बात आती है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं,
अलग अलग देश का है, अलग देश नहीं है, प्रांत का,
सबको प्रेरित करना, सबका ट्रेनिंग करना, वो कैसे होता था?
वो जन्म लिया था ना बर्मा में, हम सब बर्मिश भाषा जानते हैं, उसी भाषा से काम चलाया जाता है, कुछ कुछ भी हिंदी भाषा से, दोनों भाषा से हम लोग काम चलाता था, कोई कष्ट नहीं है। एक से मिलना, एक से मदद लेना, कोई है ये नहीं, आसान है। अभी यहाँ का नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, ऐसे बर्मा में क्या कर दिया था नेशनल लैंग्वेज बर्मिश लैंग्वेज, उसको हम लोग पढ़े लिखे हैं बर्मिश, इसलिए हम लोग कोई दिक्कत नहीं है।
कई सोशल बैरियर्स होते हैं, महिलाओं को भी INA में भूमिका दी गई।
रानी आप झांसी रेजिमेंट में भर्ती कर रहा था, उसमें लक्ष्मी शेखर था कर्नल लक्ष्मी शेखर, उन्होंने कमांडेंट था रानी झांसी रेजिमेंट का, आप तो देखा होगा सुना होगा लक्ष्मी शेखर, उसका घरवाला का नाम प्रेम कुमार शेखर। नेताजी ने बनाया INA, उन्होंने 1943 सेकेंड जुलाई पहुंचा सिंगापुर, आकर के उन्होंने INA का ये किया, रिव्यू किया था। उस टाइम में 9 कुरिला रेजिमेंट, फर्स्ट कुरिला रेजिमेंट का कमांडेंट शाहनवाज खान, सेकेंड कुरिला रेजिमेंट का कमांडर है IJ केनी, थर्ड कुरिला रेजिमेंट कमांडर गुलजारा सिंह, फोर्थ कुरिला रेजिमेंट कमांडर है GS दिलोन, फिफ्थ कुरिला रेजिमेंट कमांडर है GW रॉड्रिक्स, सेवंथ कुरिला रेजिमेंट कमांडर AIS दारा कर्नल AIS दारा, एथ कुरिला रेजिमेंट कमांडर भीषण सिंह कर्नल भीषण सिंह, नाइन्थ कुरिला रेजिमेंट कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल सोमसुंदरम, 9 कुरिला रेजिमेंट बनाया था। इसके बाद में 2 इन्फेंट्री, फर्स्ट इन्फेंट्री सेकेंड इन्फेंट्री, फर्स्ट इन्फेंट्री का है कमांडर था PK साइकिल, और बहादुर SS ग्रुप इसका कमांडर था बुरहानुद्दीन, इंटेलिजेंट ग्रुप का कमांडर था कर्नल शौकत अली मलिक, ये 2 है स्पेशल ये सीक्रेट ग्रुप, और 3 डिवीजन बनाया था, एक डिवीजन में है 20,000, 3 डिवीजन में 60,000, ये 60,000 कहाँ से बनाया, सिंगापुर से नेताजी बनाया था, 40,000 सिंगापुर से आया था, 40,000 दोबारा भर्ती हुआ था नेताजी आने के बाद में, कौन से देश है बताता हूँ, बर्मा थाईलैंड, इंडो चाइना नेशनल चाइना, मंजूरिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, फिलीपाइंस, जापान, हांगकांग, शंघाई, मलाया, सिंगापुर, 14 देश में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग भी स्थापना हुआ, INA भी वहाँ से ऐसे कलेक्ट करके INA बनाया था, 14 देश से, 14 देश वाले अपने हिंदुस्तानी लोग का अपने धन मन संपत्ति सबको निछावर के नेताजी का, उसी ताकत से नेताजी हिंदुस्तान आज़ादी किया, आज़ादी के लिए लड़ा, किसी से विदेशी से आत्म नहीं लड़ा, सब अपने मदद सब हिंदुस्तानी लोग दिया था, बाहर के हिंदुस्तानी लोग करोड़ों करोड़ों दिया था, हमारा बर्मा में 15 करोड़ दिया, ऐसा मान भी सिंगापुर वाले दिया था, सिंगापुर 14 देश में कितना है इंडियन इंडिपेंडेंट लीग है, 14 देश वाला भी नेताजी का वसूल करके पैसा दिया, कितना देश, 14 देश।
आप 8 महीने रंगून के जेल में भी कैदी की तरह रहे, तो उस समय आपके क्या अनुभव रहे, कैसी स्थिति थी?
देखो जी, जनवरी 1945 ब्रिटिश ने रिकैप्चर कर दिया, मार्च 3 तारीख का 1945 में, इसके बाद में हम लोग सबको अरेस्ट किया था, अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था सबका, सिंगापुर से आया था उनका भी अरेस्ट करने के कुछ लोग को सिंगापुर लेके गया, कुछ आदमी लोग हिंदुस्तान से भर्ती हुआ था वो, उसका क्या क्या था मुल्तान जेल और कुछ पंजाब में और पाकिस्तान में ले जाकर उसी जेल में लोग डाल दिया था। कुछ कुछ इलाका से भर्ती हुआ था, वो लोग का जन्म लिया था वहाँ, उन लोगों का। हम तो उधर का बर्मा का है, हम लोग बर्मा वासी से वो रंगून जेल में 8 महीना।
तो वहाँ पे मुश्किल भी होगी
महसूस कुछ नहीं किया हमने, ये भी हमारा है, देश के लिए मैंने काम किया है, अभी ये मेरा के लिए तोहफा मिला। मैं जेल से ना टाइम उसमें मैं बुरा नहीं समझा, मैं एक तोहफा मिल गया, देश के लिए काम किया था आज़ादी के लिए, एक तोहफा मिला करके मैं खुशी से जेल के अंदर गया था। जेल के अंदर से अपने भाई लोग हैं सब हिंदुस्तानी लोग हैं, जेल हम लोग को मिल करके एक साथ रहता था उसमें।
जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब आप किधर थे और आप क्या महसूस कर रहे थे और उस समय आपने क्या सोचा था कि भविष्य का भारत कैसा हो?
उस टाइम हमने क्या सोचा, हमारा देश तो आज़ाद हो गया, हमारा देशवासी सब फ्रीडम से रह सकता है, फ्रीडम से काम कर सकता है, फ्रीडम से दूसरे देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अभी मैं इतने किसी विदेशी का डर न कर नहीं है, टॉर्चर दिया था, दुख दिया था ब्रिटिश वाले, इन्हें भगा दिया नेताजी वजह से इन्होंने देश छोड़ कर गया, गांधी की वजह से नहीं है, जवाहरलाल नेहरू की वजह से नहीं है। इतने युद्ध में नेताजी सामने जा कर के फ्रंट में खुद ही खड़ा हो करके लड़ता था फौजी लोग का, फौजी लोग बोलता था आप चले जाओ नेताजी, आप चले जाओ, हम लोग को संभाल लेगा, बोलता नहीं कोई बात नहीं, हमारे लिए ब्रिटिश वाले ने कोई हथियार नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, मैं उसका हथियार कुछ नहीं कर सकता मेरे का, आप फिक्र मत करो, वो आगे रहता मेरे से। मुझे हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद बर्मा लोग बहुत खुश हो गया, वो हम भी हमारे देश में मेरे जा सकता हार सकता कोई मेरे लिए रिकॉर्ड नहीं है।
तो उस समय आज़ादी के वक्त आप बर्मा में ही थे?
बर्मा में
जी। तो आप आखिरी बार नेताजी से कब मिले?
1943 में जी, वो आया था ना वो बर्मा का प्रेसिडेंट, बर्मा का इंडिपेंडेंस ये फर्स्ट ईयर सेलिब्रेशन करता था, नेताजी का VIP इसे इन्विटेशन दिया था, नेताजी आया था, उससे नेताजी से मुलाकात हुआ, नेताजी मुलाकात होने के बाद में नेताजी चले गया, वापस आया था 1944 7 तारीख जनवरी 7 तारीख, उसके बाद नेताजी से मिल करके INA में भर्ती हुआ था
जी।
कितने बर्मा में रिया था INA वो ये सोल्जर का नेताजी की वजह से हम लोग को भर्ती हुआ, ऐसा INA में भर्ती होना मुश्किल है।
एक तरफ नेताजी का आंदोलन था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और दूसरी तरफ महात्मा गांधी जी का अहिंसा का मार्ग था, तो आप इन दोनों विचारधाराओं को भारत की आज़ादी के संदर्भ में कैसे देखते हैं?
देखो जी, अहिंसा से कोई काम अभी तक कुछ नहीं हुआ, अहिंसा होते है धर्म के बारे से अहिंसा का रास्ता है, दुश्मन के साथ जा करके हम अहिंसा आज जोड़ने से अहिंसा नहीं मिल सकता, दुश्मन को हथियार से लेकर के हथियार से मारना है, पत्थर से लेकर पत्थर से मारना उनका, तो हम जीत सकते हैं दुश्मन का। गांधी जी पॉलिसी से आज़ादी नहीं मिला है, अहिंसा से मिला नहीं है देश का आज़ादी, बाबू बोस की वजह से इसे देश आज़ाद मिला आप सबका, बाबू बोस नहीं होने से आज़ादी नहीं मिलेगी, देश छोड़कर जाते नहीं है ब्रिटिश वाले थे, ताकत नेता वो नेताजी का देख करके उन्होंने देश को छोड़ भागा, बोला ज़्यादा दिन हम नहीं रह सकता, नेताजी का है INA वाले हम राज करने नहीं देगा, हम जल्दी से इसी देश को छोड़ना करके लंदन में उसके प्राइम मिनिस्टर का चिट्ठी लिखा, आप ज़्यादा दिन हिंदुस्तान में राज नहीं कर सकता करके।
आपने इतना संघर्ष किया और आपके साथियों ने कुर्बानी दी, तो आप आज के भारत को कैसे देखते हैं?
उस टाइम का अलग बात है, इस वक्त का हमारा देश का हम उच्च से देखता हूँ, तो और देश धीरे 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 आगे पहुंच गया है, दुश्मन को टक्कर लेकर ताकत बन गया हमारा, तो किसी का हम डरने के नहीं है। ये तो देश भी तरक्की हो गया और देश को देशवासी वो खुश है, इसी से हम डरने के नहीं है, हम मजबूत है और आगे भागेगा। और अमेरिकन चाइना इनसे आगे हम बढ़ेगा।
और आज के युवा पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश रहेगा?
युवा पीढ़ी, नेताजी ने सिखाया, नेताजी ने क्या क्या बनाया, उन लोग पढ़े लिखे हैं, उसी हिसाब से सोचो, उसी हिसाब से चलो, आप लोग है हिम्मत मिल सकते हैं देश का काम करने के लिए। नेताजी ने बताया था यूनिटी मेन इम्पोर्टेंट है, फेथ सेक्रीफाइस, देश के लिए सेक्रीफाइस करना देना, ये तीनों को फॉलो करो, हम सक्सेस हो सकते हैं।
आपने इतना वक्त दिया, अपने अनुभवों के बारे में बताया, आज की युवा पीढ़ी से अपने विचार उनके साथ शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में हम आपसे चाहेंगे कि आपके मन में क्या आता है जब आप आईएनए के बारे में सोचते हैं, आप उसके बारे में बताएं।
कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाया जा, ये जिंदगी ये कौम के तुकों पे लुटाया जा, तू शेरे हिंद आगे बढ़, पढ़ने से फिर भी तू ना डर, उठा के दुश्मनों के सर, जो से वदन बढ़ाया जा, कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाया जा, ये जिंदगी ये कौम के तुकों पे लुटाया जा, तेरी हिम्मत पढ़ती रहे, खुदा तेरा सुनता रहे, जो सामने अरे तेरे तू खाक में मिलाया जा, कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाया जा, ये जिंदगी ये कौम की तू कौम पर लुटाया जा, चलो दिल्ली पुकार के, कौमी निशान संभाल के, लाल किले पे गाट के लहराया जा, लहराया जा, कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाया जा, ये जिंदगी ये कौम की तू कौम पर लुटाया जा। जय हिंद।
पर्सन बिहाइंड द स्टोरी पॉडकास्ट के पहले संस्करण में अभी आपने सुना आजाद हिंद फौज के लेफ्टिनेंट आर माधवन पिल्लई के साथ आकाशवाणी संवाददाता प्रज्ञा देवड़ा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।